कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर।
कुछ समय उपरांत मैं वहां हरियाणा के अंदर दिल्ली से 30 मील पश्चिम की ओर किसी गांव में आऊंगा। वहां मेरी आत्मा आई हुई होगी और मैं उसको अपनी यथार्थ भक्ति से परिचित करा के उपदेश देने का आदेश दूंगा। आप उनसे उपदेश लेना तो मोक्ष अधिकारी बने रहोगे। तो उन्होंने कहा, प्रभु हम तो हमारा 25-30 साल की आयु होगी है, अब आप कब आओगे कि पता नहीं भाई, 100 वर्ष लग जाए, 150 लग जाए, 200 वर्ष हो जाए। उन्होंने कहा आपके दास कैसे जीवित रह सकेंगे। परमात्मा बोले ये मेरा काम है, तुम जीवित रहोगे या ना रहोगे, मैंने जो कहा वो हो जाएगा। तो परमात्मा फिर संत गरीबदास जी को छुड़ानी में मिले और वो दोनों अर्जुन और सर्जुन बहुत वृद्ध हो गए थे। आपको इतना आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि 225 वर्ष की उम्र में वो कैसे जीवित रहे होंगे। पहले आयु 800-900 वर्ष, तो पुराना इतिहास देख लो, बहुत से जो भक्त साधु संतों का आपको इतिहास मिल जाएगा। तो ऐसे परमात्मा चाहे तो हजारों वर्ष लाखों वर्ष जीवित रख सकता है। ये उसी का बनाया हुआ मिट्टी से, पांच तत्वों से बनाया हुआ का पुतला है, उसी की कृपा से ये ना जाने कितने वर्षों तक रह सकता है। तो ऐसा ही हुआ, वो दोनों के दोनों अर्जुन और सर्जुन बहुत वृद्ध हो गए थे। तो उन्होंने दिल्ली से 30 मील के आसपास पश्चिम में, वो हमायूं पर गांव है खरखोदा के पास, उस गांव में रहने लग गए। परमात्मा ने कहा था कि जब मैं प्रकट होऊंगा आऊंगा तो तुम्हें दर्शन किसी ना किसी कारण से मैसेज भेजूंगा। तो उनको जब गरीबदास जी 10 वर्ष के हुए, परमात्मा उनको मिले और उनको नाम देने का आदेश दे दिया अपना सतलोक दिखा करके। उसी रात जब परमात्मा जिस दिन गरीबदास जी को मिले थे और सतलोक से वापस लाके छोड़ा था, उसी रात्रि में उनको भी दर्शन दिए अर्जुन सर्जुन को और कहा भी मेरी प्यारी आत्मा छुड़ानी में आ चुकी है और मैंने उसको आदेश दे दिया है और मैं वहां आकर जा चुका हूं, आप वहां उसके पास जाओ। छुड़ानी में गरीबदास नाम का बच्चा है और वो उसके माता पिता का नाम ऐसे ऐसे। तो स्वप्न में उन दोनों को एक जैसा स्वप्न आया। तब एक ने, अर्जुन ने कहा सर्जुन से कि सर्जुन आज मुझे भगवान दिखाई दिए थे उसी स्वरूप में। उन्होंने कहा है कि यहां कोई छुड़ानी गांव है, छुड़ानी गांव में एक बलराम के घर पर एक लड़का उत्पन्न हुआ है, वो 10 वर्ष का हो चुका है, उसको मैं आकर के आदेश दे चुका हूं। सर्जुन ने कहा कि यही ज्योंका त्यों संदेश मुझे मिला है प्रभु का। फिर जो घर, जो भक्त उनकी सेवा किया करता था, जिसके घर वह रुके हुए थे, उस पुण्यात्मा कि उसने उनसे पूछा कि वो यहां कोई छुड़ानी गांव है आपके आसपास। तब उस व्यक्ति ने कहा जी पता करता हूं, मैं परिचित नहीं हूं उस गांव से। तो उसमें ये ब्राह्मण और नाई ये नगर नगर गांव गांव में जाते थे रिश्ते आदि करने के लिए, तो उनको तकरीबन सभी गांव का ज्ञान होता था। उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे एक छुड़ानी गांव है बहादुरगढ़ से पर दूसरी साइड में, और वहां है वो छोटा सा गांव है। तो उन दोनों अर्जुन सर्जुन ने अपने उस सेवक से कहा कि बेटा आपने हमारे ऊपर बहुत रहम किया है, हमारी बहुत सेवा की है, एक अंतिम सेवा और कर दे कि हमें किसी प्रकार वहां उस गांव में भिजवा दे, छुड़ानी में छोड़ा। उस व्यक्ति ने अपना एक गाड़ी का छोटी गाड़ी यानी रेडू का आकर रेडू, वो छोटा सा होता 2-4 फुट चौड़ा 3-5 फुट लंबा, वो तैयार किया। उसमें दोनों बैठाए जोटा बुग्गी टाइप से और उसमें अपने बैल जोड़ के उन दोनों को लेकर के वहां पहुंचा। वहां पता किया तो मिल गए, तो वो गरीबदास जी से उन्होंने उपदेश लिया और अपना अधिकार बनाया, अधिकारी बने। फिर वो 6 महीने वहीं रहे, वहीं शरीर छोड़ दिया उन्होंने। छुड़ानी के अंदर उनकी वो यादगार भी बना रखी थी, अब तो तोड़ताड़ दी बाद में। तो हम वहां जाते थे, वो लोग बताया करते थे कि यहां अर्जुन सर्जुन की समाधि बना रखी थी, यादगार बना रखी थी, वो तुड़वा दी किसी संत ने। तो इस प्रकार अब तो आपको वाणी सुनाते हैं परमात्मा की। फिर गण का के संग चले सीसी बरी सराबे, गरीबदास उस पुरी में जुल्हा भया खराबे। तारी बाजी पूरी में बिष्ट जुल दी नीचे, गरीब दास गण का सजी ही दो संतों के बीच। क्योंकि वहां हथेड़ी बजान लागे, तारी पिटन लागे लोग। अब देखो ये गण का वैसा इन संतों के बीच में सज धज कर बैठी है। गावत बहन विलास पद गंगा जल पीवंत, गरीब दास भी बलब मतवाले घूमत। बड़ुआ बड़ुआ सब कहे कोय न जाने खोज, गरीब दास कबीर कर्म वो बाटे सिर का बोझ। सभी उस परमात्मा को भड़ुआ भड़ुआ गंदा आदमी नकम्मा भ्रष्ट है, ये तो दुराचारी है, ऐसे कह रहे हैं। और उसकी उसकी वास्तविकता को कोई नहीं समझ रहा कि दास गरीब कबीर कर्म। परमात्मा कबीर जी अपने सिर से बोझ उतार रहे हैं उन 64 लाख नालायकों का, जो देखा देखी शिष बन गए, विश्वास उनमें है नहीं, मनमुखी हो रहे हैं। तो वो इब बोझ क्यों कर किस तरह उतार रहे हैं कि सभी अपने आप कहेंगे हम उनके शिष्य नहीं, हम उनके शिष्य नहीं, क्योंकि शिष्य बनाना कोई बालकों का खेल नहीं है। परमात्मा कहते हैं गुरु गलतियों होते हैं, नानक जे हे पंथ और फिट जनीति संत की जो सकट शिष्य करंत। कहते हैं उस संत की मां को भी लानत है, क्यों ऐसे निकम्मे को जन्म दिया कि जो साकेट शिष्य बनाता है। साकेट का अर्थ है जो नाम ले और फिर बुराई करें जा, और उसको पता हो कि ये बुराई भी करते हैं, लेकिन वो लालच में कि तेरे को पूजा मिलती है, आते रहेंगे, कुछ भी करते रहे तो ऊपर से कुछ कहता रहे, अंदर से उनको करड़ा नहीं करे, तो ऐसे कहते हैं वो फिर गुरु गलत हो जाते हैं, उनको हानि होती है। तो जो शिष्य पार नहीं होंगे और गलती कर रहे हैं फिर भी वो अपने शिष्य मान रहा है तो उस पे भार बन जाता है, उसको दोष लगता है। तो परमात्मा अपने सिर से 64 लाख बीमारी को पटक रहे थे, उस वजन को, और दुनिया उनको कह रहे थे बड़ुआ बड़ुआ सब कहे कोई न जाने खोज, गरीब दास कबीर कर्म यो बाटत सिर का बोझ। देखो गण का संग लई कहत कौम छती से, गरीब दास इस जुलहिद का दर्शन आन हदी से। 36 कौम अर्थात सर्व जाति के व्यक्ति कह रहे हैं कि देखो इसने वैश्या को साथ ले रखा है, कैसा निकम्मा है, दुष्ट है, फलान है, और इसका तो दर्शन भी नहीं करना चाहिए, लोग इनके शिष्य बने हुए हैं। शाह सिकंदर को सुनी भिष्ट हुए दो संत, गरीब दास चारों वर्ण उठ लागे सब पंथ। चार वर्ण सट आश्रम दोनों दिन खुशाल, गरीब दास हिंदू तुरक पड़ा सैर गल जाल। शाह सिकंदर कह गए सुन कबले जहां अरदास, गरीब दास तलबा हुई वो पकड़े दोनों दास। कहो कबीर ये क्या किया गण कालीनी संग, गरीब दास भूले भक्ति ये पड़ा भजन में भंग। सिकंदर लोधी परमात्मा को बोला कि आपने ये क्या किया, आपका भजन भंग हो गया, आपने ये क्या लीला क्या कर दिया, शराब पी और साथ में एक वैश्या के संग किसका संग किया। कहो कबीर ये क्या किया गणकालीनी संग, गरीब दास भूले भक्ति तेरे पड़ा भजन में भंग। परमात्मा क्या कहते हैं, सुनो सिकंदर बादशाह हमरी अर्ज आवाज, गरीब दास वो राक्षसी जनियो साजा साज। अब सिकंदर ने के समझाओ भगवान, कहने लगे कोई बात नहीं, जो उसकी लीला है वो रक्षा करेगा मेरी। जड़िया तोक जंजीर गल सा सिकंदर आप, गरीब दास बदलीन है तारिय जप्पा जाप। हाथों में थकड़ी जंजीर गल में तोक, उस सिकंदर लोधी ने स्वयं ही उन परमात्मा के लगाई। जड़िया तोक जंजीर गल सा सिकंदर आप, गरीब दास पदलीन है वो तारी अजप्पा जाप। आथों जड़ी हथकड़ी पग बेड़ी पैराए, गरीब दास बीच गंगा में दीना ता छिटकाए। वहां पटक दिया ठाक है गंगा के बीच में। जड़गे तोक जंजीर सब लगे किनारे आए, गरीब दास देख खलक स्यो का जी बादशाह। हाथ तकड़ी हाथों की तकड़ी गले की तोक और सभी पैरों की बेड़ी अपने आप टूट गई। और इस सारे लीला को सभी संत वो नकली पीर मुल्ला काजी सारी जनता और साथ में सिकंदर बादशाह भी वहीं खड़ा था। जड़ गए तोक जंजीर सब वो लगे किनारे आए, गरीब दास देख खलक सोबाजी सत सोकाजी बादशाह। नीचे नीचे गंगा जल ऊपर आसन थीर, गरीब दास डूबे नहीं बैठे अधर कबीर। यो अचरज कैसा भया ये देखे दोनों दीन, गरीब दास का जी कहे इसने बांध दिया जलसीन। वो नकली आदमी क्या कहते हैं, वो काजी कहते हैं जादू जंत्र करके इसने जल को बांध दिया इसलिए ये ऊपर बैठा है। तुम बांध दो ने पढ़ो निष्कमा निकम्यो दुनिया ने बकारे, तुम बांध दो बैठ, तुम भी बराबर बैठो ना जाके जब माना था। तो कुछ तो है शक्ति है, तभी तो परमात्मा है, पर शक्ति नहीं तो भगवान कौन माने। गल में फांसी डारे करे बांधो सिला सुधारे, गरीब दास ये जुलहदी जब डूबे गंगधार। फिर क्या किया कि इसके ना गल में भारी पत्थर बांध दो और फिर डूबेगा, ऐसा ही किया। परमात्मा किनारे के आसपास आ गए, फिर उनको पकड़, उनको नाच नचाना था नालायकों को, फिर फिर परमात्मा के गढ़ में भारा पत्थर बांध दिए नो रस्या तर सारे शरीर का और जाकर वहां गंगा के बीच में फिर डाल दिया। वो फिर टूट गए पत्थर नीचे भगवान ऊपर जल के ऊपर पत्थर जल में डूब गया। गल में फांसी डारे करे बांधो सिला सुधारे गरीब दास ये जुल्हदी जब डूबे गंग धार सिला धरी जब नाव में बांधी गले कबीर गरीब दास पंद टूटे के ना डूबे जल नीर। पंद टूट गए वह फिर परमात्मा नहीं डूबे उस जल में। चली सिला साहक और को देखत कसी ख्याल गरीबदास कबीर का आसन अदर हमाल तीर बाण गोली चले तोप रैकले सोरे तीर बाण गोली चले तोप रैकलो सोरे गरीबदास उजल जुल्हदी के गई एक नहीं ओरे। गोली छुट्टे तोप चला दी तीर मारे उस परमात्मा की तरफ एक भी नहीं गई नहीं एक भी उसकी तरफ नहीं गई। तीर बाण गोली चला ये तोप रैकलो सोरे गरीबदास जुल्हदी के गई एक नहीं और अदरदार गोले बहे अदरधार गोले बह ये जल के बीच गभाक। जैसे केवल कितनी सिंपल लैंग्वेज प्रयोग की है कि जैसे बालक डले मारा करते नो पानी में और वो गभाक की आवाज करते नो डला गभाक देसी बोलिया तो यहां उसी लैंग्वेज में कह रहे हैं कि गोले ऊपर आवर जल में ऐसे पड़न जैसे डले गभाक देसी पड़ते हैं और वो शांत हो जाते हैं। अदरधार गोले बह ये जल के बीच गभाक गरीबदास उस जुल्धी पर गरीबदास उस जुल्हाए पर ये छूटे सस्तर लाख। कितनी तरफ से दुष्ट आत्मा आक्रमण कर रहे थे पर परमात्मा का वो कुछ नहीं बिगाड़ सके। तोप रैकले सब चले ये तीर बाण कमान गरीबदास उस जुल्हदी वह जुलदी जल में रहा अमान। अदरधार अपार गति ही जल पर लगी समाद गरीबदास निज पद ब्रह्म पद खेल आज अनादि। जुलम हुआ बूढ़े नहीं शस्त्र लगे ना बाण गरीबदास इब कौन गति कैसे लेवे प्राण। अब वो सारे अपने डिस्कस कर रहे हैं कि इसने कैसे मारा मरता है को नहीं सारे तरीके अपना लिए। लगी समाधि अगाध में बिचरे काशी गंगे गरीबदास किलो लेकर छू है चरण तरंगे। परमात्मा ऊपर बैठे हैं आसन पदम लगा के गंगा के जल के ऊपर और गंगा के जल की जो तरंग लहरें उछल उछल कर भगवान के चरणों को छू कर फिर वह आगे को चल पड़ती हैं और परमात्मा जल से एक फुट ऊपर विराजमान है। चार पैर गोले बगे दमकी मुल्क मैदाने गरीबदास पोखर सोके रहे कबीर अमाने। चार पहर गोले चले और आसपास के सब धमाके सब कुछ घबरा गया और पोखर आसपास की जो झील थी वह भी सूख गई उन गोलों के गिरने से। लेकिन कबीर परमात्मा जो के तो रहे सुरक्षित रहे उनकी तरफ एक भी कोई घातक शस्त्र नहीं गया। अपनी करनी सब करिए थाके दोनों दीन गरीबदास जुल्हदी गरीबदास अब जुल्हदी बैठ गए जलमीन। परमात्मा जब वो थक लिए ना सारे विचार करे क्यों कर मारा इसने ये तो मरता ही नहीं अपने आप जमीन के वो जल में नीचे चले गए। डूब्या डूब्या सब कहे हो गया गारत गोरे सब कहने लगे डूब गया गया खत्म हो गया नाश इसका। गरीब दास कबले धनी तुम आगे क्या जोर, आनंद मंगल होते हैं ये बटे बदाई बेग। गरीब दास उजुल हदी पर भाई फिर गिरे तीरेग। अब लाडू बांटे बधाई एक दूसरे ने दे, बधाई हो मर गया हो पापी, रथरा गजबई हो, हे भगवान देख किसे अंधे बना दिए हम, अपने भगवान के पीछे पड़े हुए। इन काल के प्रेरित प्राणियों ने, ऋषियों ने, संतों ने, मुल्लाओं ने, काजियों ने परमात्मा के विरोधी बनाकर के हमें और दूना दोषी बना दिया। अपने पिता का हम पीछे पड़े हुए हैं और काल के पाले में खड़े होकर के हम पत्थर मार रहे हैं। जो हमें यहां बचाने आए हैं, जो हमें अपना यथार्थ ज्ञान बताने आए हैं, हम उन्हीं के पीछे पड़े हुए हैं। दे हमारे कितने खोटे बाग। और परमात्मा कहते हैं गोता मारू स्वर्ग में और मैं जा बैठू पैताल, गरीब दास ढूंढता परू अपने हीरे मोती के लाल। मैं रोवत हूं सृष्टि को ये सृष्टि रोवे मोहे, गरीब दास मारे वियोग को हो समझ ना सकता कोई। परमात्मा कहते हैं ये भोली आत्मा जब दुखी होती है भगवान भगवान करती फिरती है, ये मुझे ढूंढ रही है रो रही है क्योंकि जिन भगवानों की पूजा करते हैं वो इनको लाभ नहीं दे सकते, इनके संकट को निवारण नहीं कर सकते। और जो संकट निवार करने वाला भगवान मैं हूं ये मुझे ढूंढते हैं लेकिन मेरे पाने की विधि इनको पता नहीं। ये मुझे रो रहे हैं मैं इनको रो रहा हूं कि मैं भगवान हूं, तुम मेरी बात को मान लो, जिसकी तुम पूजा करते हो ये काल है और इसका बहुत ही भयंकर ये जाल है जिसमें तुम कष्ट उठा रहे हो, पर ये मेरी मानते नहीं एक बात को। तो इस वियोग को हमारे एक दूसरे को जो विमुख हो गए हम, इसने कौन समझावे। इसको कौन खत्म करे, उसका विधि भी बताई है कि तत्वदर्शी संत करेगा क्योंकि स्वयं परमात्मा आए नहीं माने। अब ये दास भेजा ये बताने के लिए कबीर परमात्मा था और है और रहेगा, आपके मानने ना मानने से उसका अस्तित्व समाप्त नहीं हो सकता। मानोगे तो आपका भला है, ना मानोगे तो वो तो भगवान है ही, पर आप लाभ से वंचित रह जाओगे। तो इसलिए उस परमात्मा ने इस दास को भेजा है और सब सदग्रंथों के प्रमाण आपके समक्ष रखवा दिए कि 600 साल पहले भगवान ये बात बताया करते जो आज ये दास आपको सदग्रंथों में दिखा रहा है। तो इसे सिद्ध है कि परमात्मा सर्वज्ञ है, वो पूर्ण परमात्मा है, वो पहले से इन वेदों और ग्रंथों को जानते थे। बेशक वो संस्कृत भाषा ना अक्षर ज्ञान बेशक नहीं था उनको, अक्षर ज्ञान अलग चीज है और तत्व ज्ञान ये अलग वस्तु है, आध्यात्मिक तत्व ज्ञान ये वास्तविक ज्ञान है। अक्षर ज्ञान तो किसी ने एक भाषा का है, किसी ने दो का होगा, तीन का हो जाएगा, फिर भी भाषाएं बहुत रह जाती हैं। तो वो सर्वज्ञ नहीं हो सकता, वो महर्षि नहीं हो सकता। आनंद मंगल होते हैं ये बटे बदाई बेग, गरीब दास उस जुलहदी पर भाई फिर गिरे तीरेग। खुशी मना रहे हैं, लाडू बाटे बधाई दे एक दूसरे ने, मर गया अब उसके ऊपर रेत, गंगा के जल में डूब गया उसके ऊपर रेत फिर जाएगा, गारा चढ़ जाएगी उसके ऊपर, वो क्या नष्ट ढूंढे तो भी ना पावे। अस्थि घोड़े चढ़त हैं ये पान मिठाई चीर, गरीब दास काशी खुशी बै डूबे गंग कबीर। एक डूब गए गंगा में कबीर, सब खुशी मना रहे हैं। जाओ घर रविदास के हिलकारे हजूरे, गरीब दास खुशियां कहो कहियो नहीं कसूर। जालर डोलक बाजत हैं गावे शब्द कबीर, गरीब दास रे दास संग दोनों एक ही तीर। वहां जाके देखा रविदास के घर पे तो परमात्मा अपना शब्द गा रहे हैं। वह गए थे ये बताने के लिए कि तेरा वो भगत गुरु भगवान डूब डाब गया, तू भगवान बताया करता। वहां जाके देखा भगवान आगे बैठे हैं तो सबकी मां सी मिर्गी। काजी पंडित सब गए फिर सा सिकंदर उठे, गरीब दास रविदास के भेख गए जुट जूट। सिकंदर लोधीर सारे फिर रविदास के घर गए कि कहां है वो। कोठी कुठले सब जके बासन टिंडर गोल, गरीब दास चमरा सोनो कहां गए वो बोल। अब वो इसे नालायक थे, रविदास जी की झोपड़ी में सारे टटोल दिए को मटके थे, वह भी उल्टे कर देख लिए कि दिन में बढ़ गया हो। युवती दबा शब्द गा रहा था तो कहते हैं कि हे रविदास जी वो कहां गए जो अभी आवाज हम सुन रहे थे। वे प्रगट पूर्ण ब्रह्म है अविनाशी आप अलह, गरीब दास रविदास कहे सुनो सिकंदर सा। रविदास जी कहते हैं कि सिकंदर सुन ले मेरी बात, वो खुद परमात्मा है। वे प्रगट पूर्ण पुरुष हैं अविनाशी आप अलाह, गरीब दास रविदास कहे सुनो सिकंदर सा। के सिकंदर बादशाह सुन ले मेरी बात, वो भगवान है, सारी सृष्टि के रचनहार हैं, वो खुद अल्लाह है। सूरजमुखी शोभान सर खिले फूल गुलजार, गरीब दास का जी पंडित करता सा पुकार। सा सिकंदर फिर गए उस गंगा के तीर, गरीब दास गरीब कबीर हरी बैठे ऊपर नीर। वो फिर गए गंगा में तो वहां परमात्मा फिर ऊपर बैठे पाए। बैठे मला जिहाज में गए धार के बीच, गरीब दास हर करें प्रेम फुआरे सींच। कई अर्ज अल्लाह तहां दीन दुनी बादशाह, गरीब दास आसन अदर लगी समाध जुला। भवन फिरते गंगा जल फूले फूल उगाने कोट, गरीब दास ता बंदगी हरिजन हर की ओट। साकल सीढ़ी लाए कर उतरे तहां मला, गरीब दास हम बंदगी तुम याद किए बादशाह। मल्हा ने जाके कहा कि आपको बादशाह याद कर रहे हैं, आप चलियो। बैठ कबीर जहाज में आए गंगा घाट, गरीब दास काशी थकी हांडे बोविद बाट। अब वहां तो प्रेम से बुला लिया भगवान को, और फिर उस नीच आत्मा सिकंदर लोधी ने हाथों में थकड़ी लाके खुन्नी हाथी के सामने डाल दिया। खुन्नी हाथी मस्त है पग बंधे जंजीर, गरीब दास ना डारिया मस्क बांध कबीर। मस्क बांध के गोला लाठी दे के, गोला लाठी कैसे होती थी, ऐसे हाथ बांध दे पैर बांध दे, और हाथों के ये हाथ इन पैरों के घुटनों के नीचे जो जगह होती है यहां लाकर एक डंडा दे देते, एक डंडा दे करके उसको डाल देते हैं, उसको गोला लठी बोले, मस्क बांध देते हैं उसको। ऐसी दुर्गति की भगवान की, हम नामी से दुष्ट हैं, हम इतने नीच प्राणी हैं परमात्मा को पहचान नहीं सके। हम पहचाना तो ये पहचान नहीं देते जो दुष्ट आत्मा है, जो गुरु पीर ऋषि मैं ऋषि नकली जो काल प्रेरित है, वो अपने स्वार्थ बस कहीं तुम्हारी दुकान बंद ना हो जा, उनको किसी जीव के कल्याण से कोई लेना देना नहीं होता। उनको अपनी महिमा और अपनी दुकान बरकरार रखनी होती है, वही इस मानव समाज के सबसे बड़े शत्रु होते हैं, और वही दशा आज चल रही है। जितना भगवान को दुखी कराया था अभी तो इतना हमारा नंबर भी ना आया है, लेकिन अब इतना अंतर रह जाएगा क्योंकि हम सब शिक्षित हो गए, सदग्रंथ हमारे पास हैं, तो उन पाप आत्माओं की दाढ़ी गले को नहीं। ठीक है छोटे मोटे आंधी तूफान तो आई जाते हैं फसल में, पर परमात्मा साथ है, बाग बगीचा नौका नो बचा लिया अपना। अब भी उन्होंने यही कोशिश की थी और कर ही रहे हैं, लेकिन ईब उनकी पार बसावे को ना। हम परमात्मा के पूर्व लीलाओं से परिचित हैं, ज्ञान से अच्छी तरह हम समझ चुके हैं इस ज्ञान को और प्रभावित हैं, इसलिए हम ईब मार खा नहीं सकते। अब मार खा गए तो फिर हमने बचाने वाला इस युग में तो आएगा नहीं। तो इसलिए ये ज्ञान, ये लीलाएं आपको समझाई जाती हैं कि ये फाउल पॉइंट्स हैं। हमने अपने परमात्मा पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए, क्योंकि हम स्वयं यहां देख रहे हैं, हम उनकी क्रियाओं से परिचित हैं। एक जनसाधारण यहां आया नहीं है, किसी ये भ्रमित किया हुआ कुछ भी कह सकता है। आपके मन में उनकी बातों का प्रभाव नहीं होना चाहिए, फिर आप खड़े हो। खुन्नी हाथी मस्त है, पग बंधे जंजीर, गरीब दास्तां डारिया मस्क बांध कबीर, सिंह रूप साहेब धोरा बागे उल्टे फील, गरीब दास नहीं समझती या दुनिया खलील। परमात्मा ने शेर का रूप धारण किया और हाथी को शेर रूप दिखा दिया, तो हाथी भाग गया। बने केहरी सिंह जीत चोर शिखर आसमान, गरीब दास हस्ती लख्या दिख नहीं जहान। केवल हाथी हाथी को दिखाई दिए शेर। कुटे शीश महावतम अंकुश सिर गर्गाप, गरीब दास उल्टा भग तारी दीजे थाप, बाले कुखो मारिए चरकी छूटे पाख, गरीब दास नी निकट जावे किलकी देवे लाख। हाथी ने उसकी तरफ मारने के लिए भेजते हैं, बाहर खड़े हुआ भी उसका हाथी के बाले ठोके चल उल्टाए, लेकिन किलकी मारे उसको प्रेरित करते हैं, लेकिन हाथी उधर नहीं जा रहा है, वापस ही भाग रहा है। कुखों में बाले, कुख बोलते हैं यहां हाथ, जैसे अगले पैरों के पास ऐसे पिछले पेट की साइड में जो कुख होती है, उड़ा बाले ठोके। बाले कुखो मारिए चरखी छूटे पाख, गरीब दास नहीं निकट जावे किलकी देवे लाख। जैसी भक्ति कबीरी की ऐसी करना कोय, गरीब दास कुंदर थके उल्टे भागे रोए। कहते वो कुंदर माने हाथी उल्टा रो रो के चिंगहाड मार मार कर भाग रहा है। दुम गोवे मुंडी धुने सैन न समझे एक, गरीब दास दिखे नहीं आगे खड़ा अलेख। अब वो दुम गोवे यानी पूछड़ ने दाब रहा और मुंडी धुने ने उल्टा उल्टा भागे, उसके संकेत को, हाथी के संकेत को कोई नहीं समझ रहा, क्योंकि उसने आगे वो शेर खड़ा और फिर परमात्मा का स्वरूप दिखाई दिया। पीलवान देख्या तब खड़ा के हरि सिंह, गरीब दास आए तो हां धर्म लाभ उरंग। फिर उस पीलवान को दर्शन दिए प्रभु ने शेर रूप में, तब वो पीलवान भाग गया, पड़ गया, उसने हाथी को नहीं सताया, हाथी भी भाग गया, पीलवान गिर गया। तो पीलवान कहता है यहां तो शेर खड़ा है। पीलवान देखा तब खड़ा के हरि संग, गरीब दास आए तहां धर्मो लाभ उरंग। वहां परमात्मा नाना प्रकार के रूप बना करके उतरे। उतरे मौला अरस्ते भाव भक्ति कहे ते, गरीब दास तब सह लखे कबीर पुरुष सहेत। तब सिकंदर लोधी ने परमात्मा को, कबीर जी को का जो वास्तविक रूप भगवान ने दिखाया, उसमें दिखाई दिए। लीला की कबीर ने दो रूप लीला करी, लीला की कबीर ने दो रूप मरे दीस, गरीब दास कबीर के पास खड़े जगदीश। दो रूप बना दिए मालिक ने, एक रूप में तो बंधे पड़े हैं और दूसरे में भगवान अल्लाह का रूप दिखाया। जम्भाइया अंगड़ाइया लंबे बे दयाल, गरीब दास उत्साह को मानो दर्शा काल। जैसे परमात्मा फिर वो खड़े हुए, वो बांध रखे थे टूट के खड़े हो गए, अंगड़ाई जम्भाई लेकर ऐसे हुए तो इतने लंबे दिखाई दिए आकाश के छुए हुए, घबरा गया सिकंदर लोधी। कोट चंद्र शशि भाने मुखे गिरद कुंड मुदुम लील, गरीब दास ताना टेके वो भाग गए रणफील। नैन लाल भोपित डूंगर नक पहारे, गरीब दास उत्साह को सिंग रूप दीदार। मस्तक शिखर सोरग लग गीरग दे बिलंद, गरीब दास री उतरे ये काटन जम के फंद। एक रूप में शेर रूप दिखाया, फिर स्वयं ही खड़े हुए, फिर दो रूप दिखाए शेर और परमात्मा का, फिर स्वयं ही खड़े हुए जो बांध रखे थे, और इतनी ऊंची देह होगी, बहुत ऊंची। मस्तिष्क शिखर स्वर्ग लग परमात्मा का शरीर ने स्वर्ग तक दिखाई दिया माथा। और दीर्घ ले देह बुलंद, गरीब दास हरि उतरे भाई काटन काल के फंद। जो नरसिंह प्रहलाद के वह नरसिंह यो वह नरसिंह एक, गरीब दास हरि आईया ये राखण जन की टेक। बार बार सताए करे मस्तक लीना भारे, गरीब दास सहायों कहे मुझे बक्सो इब की बारे। वो सिकंदर बादशाह कहता है मुझे बक्श दे भगवान, इब 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 का माफ कर दो, मुझे गलती होगी। तहां सिंह लोलीन हुआ परचा इब की बारे, गरीब दास यूं कहे अल्लाह दिए दीदारे। सिकंदर कहता है कि मुझे तो भगवान दिखाई देंगे, ये भगवान है अल्लाह है। सुन काशी के पंडितो, सिकंदर लोदी कहता है सुन काशी के पंडितो काजी मुल्ला पीरे, गरीब दास इसके चरण दो ये अल्लाह अलख कबीर। बोलो सतगुरुदेव, ये कबीर अल्लाह है उतरे काशी धाम। गरीब दास सिकंदर यूं कहे हम झगड़े मरे बेकाम। पुण्यात्माओं, ये पूर्ण ब्रह्म है, सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर हैं। हम इनको नहीं पहचान सके, उसमें परमात्मा ने जो ज्ञान दिया था ये दास आपको वही ज्ञान आज प्रचार कर रहा है। इतना अवश्य दास पर मेहर की प्रभु ने कि हमारे जैसे तुच्छ बुद्धि जीव संज्ञा में जन्मे इस प्राणी को सभी सदग्रंथों का रहस्य बता दिया। न हम संस्कृत से परिचित हैं और न हम किसी अरबी या फारसी किसी अन्य भाषा से परिचित हैं। इतना अवश्य किया प्रभु ने कि जो वेदों के संस्कृत के ज्ञाताओं ने जैसा भी वेदों को पढ़ा जाना उनका अनुवाद कर रखा हिंदी में। हम हिंदी से परिचित हैं, हम इंग्लिश से परिचित हैं और अपनी मातृभाषा जो लोकल भाषा इससे भी परिचित है। और परमात्मा ने जो ज्ञान दे रखा था जो पुराणों का, कुरानों का, बाइबल का और वेदों और गीता जी का, वो सभी अपनी साधारण भाषा वाले उस तत्व ज्ञान में अर्थात सौषम वेद में सब लिखा हुआ था। और हमें हमारे परमात्मा की विशेष कृपा हुई कि हमने उस परमात्मा के ज्ञान को सत्य मान लिया था, क्योंकि बहुत ऐसे प्रमाण हैं जो बगैर सदग्रंथों को देखे भी सुफिशेंट हैं, पर्याप्त हैं। फिर दास ने सोचा कि हम तो मान गए और कुछ वो लोग भी मान जाएंगे जो दुखी हैं उनको सुख हो रहा है वो मान रहे हैं, परंतु परमात्मा ये तो वही कहानी फिर आ जाएगी, ये तो वही बात फिर दोहराई जाएगी जो आप आए थे 600 वर्ष पहले, लोगों को सुख हुआ तो आपके साथ थे और किसी ने बदनामी कर दी आपको जो है के बारे में ऐसे ऐसे भ्रमणाएं फैला दी तो फिर दूर हो गए, बात तो वही रह जाएगी। तो प्रभु ने एक दिन प्रेरणा की कि प्रभु ने जो ज्ञान दिया है परमात्मा ने ये सत्य है, इसमें नो डाउट, जो कि कबीर वाणी गरीबदास जी के सदग्रंथ नानक साहिब की वाणी, जो भी संत उनसे परिचित हैं, उन्होंने एक ही आवाज लगा रखी है, एक ही सुर में बोले हैं सभी, उनका एक ही वाणी का जो उद्देश्य है एक जैसा है, एक ही ज्ञान है। तो जब ऐसे महापुरुष जिनको परमात्मा प्राप्त हुए और उनको उन्होंने एक जैसा ही कहा है, कबीर अल्लाह है, कबीर हक्का कबीर है, ये धारणक रूप रहा करतार, तो फिर भगवान ये है तो वेदों में भी मिलेगा, वेदों और गीता में भी होगा, इसका जरूर वर्णन होगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो दास के ऊपर परमात्मा रजा की सन 2000 में अचानक प्रेरणा हुई कि गीता मंगाता हूं, क्योंकि हमने जरूरत नहीं थी इन सदग्रंथों की, क्योंकि हम अपने परमात्मा के एक सदग्रंथ में सभी ज्ञान उपलब्ध है, सोषम वेद में, कबीर वाणी में, और कबीर श्री संत गरीबदास जी के वाणी में, कबीर सागर में, कबीर साहिब की सब जो शब्दावली है उनमें, कबीर बीजक में। तो एक अनुवादित वो अनुवाद किया हुआ गीता प्रेस गोरखपुर से श्रीमद् भगवत गीता वो देखी, जब उसमें देखने लगा तो पता चला कि गीता ज्ञान दाता तो कहता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। तो उसमें हम समझते थे ये कृष्ण बोल रहा है, तो ये हुआ कि एक तरफ तो हम कहते हैं कृष्ण और ये अजरो अमर है, विष्णु भगवान का जो है ना सर्वशक्तिमान है, और ये कह रहे हम तो जन्म मृत्यु में हैं। फिर बहुत से ऐसे प्रमाण देखे कि गीता ज्ञान दाता कह रहा है कि तू उस परमात्मा की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू शाश्वत स्थान और परम शांति को प्राप्त होगा। तो मन में एक उमंग सी उठी के बनेगी बात, गीता ज्ञान दाता से कोई और सुप्रीम पावर है जिसकी तरफ गीता ज्ञान दाता भी संकेत कर रहा है। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है कि अर्जुन तू सर्व भाव से उस परमात्मा की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति और शाश्वत स्थान यानी सत्यलोक सदा रहने वाले लोक को प्राप्त होगा। और अपने विषय में कह रहा है कि मैं तो मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, आगे भी होंगे, इतना अंतर है कि मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है। तो इससे सिद्ध हुआ कि ये गीता ज्ञान दाता अविनाशी नहीं है, ये नाशवान है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 में, गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में कहा, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 में कहा कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत से जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। फिर 9 में कहा है, चौथे अध्याय के श्लोक 9 में कहा है कि अर्जुन मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं। आगे फिर गीता जी अध्याय नंबर 4 के ही श्लोक नंबर 25 से लेकर 32 तक उसमें बताया गया है कि कोई तो परमात्मा की साधना ऐसे करता है, कोई हठ योग से करता है, कोई देवताओं की पूजा पर आधारित है, कोई कैसे करता है। तो सातवें अध्याय के 32वें श्लोक में लिखना, चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है कि परमात्मा पूर्ण परमात्मा के मुख्य ज्ञान में अर्थात उस तत्व ज्ञान में परमात्मा के पाने की विधि भिन्न भिन्न प्रकार से लिखी है। उस ज्ञान को चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू किसी तत्वदर्शी संतों के पास जा, उनसे दंडवत प्रणाम कर, उनसे समझ, फिर जैसे वो संत कहे तू ऐसे कर। तो इसे भी सिद्ध हुआ कि गीता ज्ञान इनकम्प्लीट है, ये अधूरा है, कंप्लीट नहीं है, लेकिन गलत नहीं कह सकते। जैसे एक पांचवी कक्षा का सिलेबस है, एक मैट्रिक यानी 10वीं तक का सिलेबस है, वो गलत नहीं है, लेकिन वो बीए और एमए का नहीं है। तो उसमें कहा कि उस तत्व ज्ञान को समझने के लिए उन तत्वदर्शी संतों के पास जा, उनको उनसे संबंध, उनको दंडवत प्रणाम कर, भली भांति निष्कपट भाव से उनको उनसे ज्ञान प्राप्त कर। फिर गीता उस तत्व ज्ञान की पहचान गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में बताई है कि ये ऊपर को लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, और जो संत इसको सभी अंगों सहित भाई जड़ क्या है इस उल्टे लटके संसार रूपी वृक्ष की, तना कौन है, डार कौन है, टहनी कौन है, पत्ते क्या है, इसके भिन्न भिन्न को विवरण देगा तो वो तत्वदर्शी संत होगा। अब देखिएगा ये गीता अध्याय नंबर 15 का मंत्र 1, ये देखिएगा ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है और जयदाल गोविंद का इसका अनुवादक है। अध्याय नंबर 15 और ये देखिएगा अध्याय अर्थ पंचदशो अध्याय 15वां अध्याय, ये प्रथम मंत्र है, ऊर्ध्व मूलम अध शाखम, ऊपर को मूल जड़ वाला नीचे को शाखा वाला, अश्वतम प्राहु अवम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित। क्या बताया कि ऊपर को मूल जड़ वाला नीचे को शाखा वाला, शाखाएं जिसकी हैं, और ये एक पीपल का वृक्ष है, अविनाशी संसार रूपी वृक्ष है, इसकी छंदासी यानी छोटे छोटे भाग हैं इसके और पत्ते हैं, जो ये माने जो तम माने उसे वेद माने जानता है, स वेदवित वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला यानी वो तत्वदर्शी संत है, स वेदवित। यहां देखिएगा आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले ऊर्ध्व मूलम अध शाखम, ये इन्होंने गलत अनुवाद किया है, इन्होंने क्या ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले नहीं, अध माने नीचे को, इन्होंने मुख्य कर दिया अध का, नहीं ये देखिए इन्हीं की भाषा में यहां अध माने नीचे, शाखा माने शाखा, अध माने नीचे, हम अपनी तरफ से नहीं, इन्हीं ऊर्ध्व माने ऊपर, ये ऊर्ध्व ऊपर यहां फिर आइए अध शाखा, ये ऊर्ध्व मूलम आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले यानी आदि पुरुष परमेश्वर रूपी ऊपर को मूल वाले, यहां लिखना था ऊपर को मूल वाले, ऊपर को जड़ वाले, ऊपर ऊर्ध्व माने ऊपर, मूलम माने मूल, और अध शाखम नीचे को शाखा वाले, जैसे ये देखिएगा ये ऊर्ध्व मूलम, ये ऊपर को जड़ ऊर्ध्व मूलम और नीचे को शाखाएं, ये पूरा वृक्ष देखें, ऊपर को जड़ वाला और नीचे को शाखा वाला, ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा वाला, ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, और जो इसके छंद यानी छोटे छोटे पार्ट्स ऑफ द बॉडी कहते हैं ना, तो जैसे इस संसार रूपी वृक्ष के पार्ट यानी ये तना है, ये डार है, ये तीनों शाखा हैं, ये पत्ता रूपी संसार है, जो इनको भिन्न भिन्न बताएगा स वेदवित वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। परमात्मा ने कबीर परमेश्वर ने स्वयं ही बताया था अक्षर पुरुष एक पेड़ है निरंजन वाकी डारे, ये तीनों देवा शाखा हैं भाई पातरोप संसार। अक्षर पुरुष एक पेड़ है जो जड़ से बाहर, जड़ नीचे है जमीन से बाहर जो दिखाई देता उसको हम पेड़ बोलते हैं, वृक्ष बोलते हैं। परमात्मा ने बताया था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये देखिएगा ये अक्षर पुरुष एक पेड़ है, यहां देखना ये तना इससे ऊपर, ये अक्षर पुरुष छर पुरुष एक अक्षर पुरुष, ये अक्षर पुरुष है परब्रह्म, ये तो तना, और ये ज्योति निरंजन ब्रह्म, ये छर पुरुष, ये इसकी मोटी डार है और तीनों देवा शाखा हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, और ये पात रूप संसार, ये इसके पत्ते कौन है, ये संसार है। अक्षर पुरुष एक पेड़ है निरंजन वाकी डारे, ज्योति निरंजन ब्रह्म भी कहते हैं इसको, छर पुरुष भी कहते हैं, और तीनों देवा शाखा है भाई पात रूप संसार। तो जड़ कौन रह गया, ये जड़ कौन है, ये परम अक्षर ब्रह्म, ये परम अक्षर पुरुष यानी पूर्ण ब्रह्म स्वयं कबीर देव है, कबीर प्रभु। अब फिर देखिएगा इसी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर प्रथम को, ये देखना, ऊर्ध्व मूलम अध शाखम अश्वथम प्राहु अवम छंदासी यस्य प्रणाणी, यानी ऊपर को जड़ वाला आदि पुरुष परमेश्वर तो जड़ है, ऊपर को है, और अध नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है, ये एक पीपल का वृक्ष है, अवय अविनाशी कहा जाता है, और उसके छंदासी माने छोटे छोटे भाग तथा उसके पत्ते, इन सब को, यह तम वेद, वेद माने जानना भी होता है, यह तम वेद जो इस उसको जानता है, सह वेदवित, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला अर्थात वह तत्वदर्शी संत है, ये पहचान बताई। यहां देखिएगा, आदि पुरुष परमेश्वर, परमेश्वर मूल वाले यानी ऊपर को, ऊर्ध्व भी लिखना हमने क्योंकि इसका भी अनुवाद होना चाहिए, ऊर्ध्व माने ऊपर को जड़ रूपी आदि पुरुष परमेश्वर परमात्मा पूर्ण ब्रह्म है, और अध शाखम नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है, ये फिर संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, वेद आगे देखो, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित यानी जड़ से लेकर सब भागों को जानता है, यह वेद तत्व से जानता है, वेद माने जानता है, सह वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। अब देखो नीचे दूसरे में अध्याय श्लोक नंबर 2 अध्याय नंबर 15 का, उस संसार रूपी वृक्ष की तीनों गुण रूप, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तो सतगुण विष्णु, तमगुण शिव, तीनों गुण रूप ये जल द्वारा बड़ी हुई नहीं शाखाएं हैं, विषय पर वाला, ये तीनों विषय हैं, विकार हैं, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, विषय विकारों भोग रूप कोपलों देव मनुष्य शाखा माने तरक आदि, ये इन्होंने अपना जोड़ा है, शाखा माने शाखाएं हैं, और नीचे और ऊपर, नीचे और ऊपर, अध माने नीचे, ऊर्ध्व माने ऊपर, सर्वत्र नहीं है, इन्होंने जोड़ा है, सर्वत्र ऊपर फैली हुई है, यानी मनुष्य लोक में, मनुष्य लोक में ऊपर फैली हुई है, व्याप्त है, व्याप्त हो रही है सभी लोकों में, नहीं ऊपर कर्मा, ये देखना, मनुष्य लोक में कर्मों अनुसार बांधने वाली भी ये मुख्य मूलानी यानी मुख्य कारण है, अहम ममता और वासना रूपी जड़े हैं, इनके मुख्य कारण हैं, और अध्यमान नीचे और ऊर्ध्व माने ऊपर सभी लोकों में नहीं व्याप्त हो रही हैं, अनुसंतान संततानी यानी ये केवल व्याप्त हो रही हैं ऊपर, कैसे, जैसे पृथ्वी पर यह ज्ञान बोला जा रहा था, और स्वर्ग लोक ऊपर है, पाताल लोक नीचे है, इन तीन लोकों पर रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की प्रभुता है, इनके गुणों की रेंज इनके शरीर से निकल रही शक्ति इन तीनों लोकों के प्राणियों को प्रभावित करती है ऊपर और नीचे, और पृथ्वी पर बोला ही जा रहा है ज्ञान, इसलिए ऊपर और नीचे कहा है। तो यहां देखिए अब अध्याय 15 का ही ये तीन श्लोक, दो आपने पढ़ लिया, तीसरा देखो, इस संसार वर्ष का स्वरूप जैसा जैसा यहां कहा है, स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहां विचार काल में नहीं पाया जाता। ये क्या कह रहा है कि गीता ज्ञानदाता कह रहा है, गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि जो मैं तुझे गीता ज्ञान सुना रहा हूं इसमें मुझे, मैं स्पष्ट नहीं कर पा रहा हूं उस परमात्मा के पूर्ण सृष्टि रचना को, जैसा मैं तुझे यहां विचार काल में तेरी मेरी चर्चा में जो गीता ज्ञान चल रहा है इसमें मैं पूर्ण रूप से नहीं बता पा रहा क्योंकि मुझे वो पूर्ण ज्ञान नहीं है। इसलिए तत्वदर्शी संत की तरफ संकेत किया, यहां देखा है नहीं पाया जाता। यहां देखो इस संसार वृक्ष का, इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहां विचार काल में यानी तेरी मेरी चर्चा में नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसका आदि है और न इसका अंत है तथा न इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति है। इसलिए इस सो विरोध मूलम यानी दृढ़ मूल वाले अर्थात तो उस संसार रूप सतलोक में जो कबीर परमात्मा रूपी जो भगवान है उसको मूल वाले संसार रूपी वृक्ष को दृढ़ यानी सृष्टि रचना को समझो दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा काटकर, वैराग्य यहां है असंख शस्त्रेण, असंख का अर्थ है काटकर अर्थात तत्व, क्योंकि वैराग्य कब होगा जब हम तत्व ज्ञान सुनेंगे और फिर उस तत्व ज्ञान से प्रेरित होकर हम तत्वदर्शी संतों के पास जाएंगे, तलाश करेंगे, खोज करेंगे, फिर वो तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से कटेगा युड़जेड़ा, ये उलझी हुई जो गुत्थी है उस तत्वदर्शी तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से काटकर, यानी जब वो तत्व ज्ञान समझ में आ जाए, सब क्रियाओं को ठीक ढंग से समझ करे और सब संसार को मिथ्या जान के, उसके बाद क्या लिखा है आए काट कर चौथे अध्याय में, पंद्रहवें अध्याय के चौथे श्लोक में, पंद्रहवें अध्याय के चौथे श्लोक में क्या कहा है ये आगे पढ़ते हैं। तत् पदम तत् ये सारा उन्होंने किया है, उसके पश्चात उससे परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए। तत्व ज्ञान समझ में आने के उपरांत फिर उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए जिसमें गए हुए पुरुष यानी साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते और जिस पद परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई अर्थात जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, जिस भगवान ने संसार रचा है, इसे सिद्ध है गीता ज्ञान दाता भी सृष्टि करता नहीं है, उसी आदि पुरुष नारायण की मैं शरण हूं। गीता ज्ञान दाता कह रहा कि मैं भी उसी की शरण में हूं। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उसी परमेश्वर का मनन और निधि ध्यान करना चाहिए। अब ये बातें दास को खटकी कि गीता ज्ञान दाता कह रहा है कि वो तो परमात्मा कोई और है, उसका ज्ञान तत्वदर्शी संतों से प्राप्त करो और मैं भी उसी की शरण हूं। फिर तो मानो खजाना मिल गया दास को। उसके बाद फिर इस श्रीमद् भगवत गीता जी का अनुवाद दास ने किया, उस तत्व ज्ञान परमात्मा के दिए हुए पूर्व जो ज्ञान सिंपल लैंग्वेज में दे रखा था उसी के आधार से इसका अनुवाद किया और पुस्तक का नाम रखा गहरी नजर गीता में। इस पुस्तक को पढ़कर अब पुण्यात्मा शिक्षित वर्ग गदगद हो रहा है और तत्व ज्ञान को समझकर दास के पास आकर के परमात्मा की शरण ग्रहण कर रहा है और मानो जैसे भूलों को राह मिल जावे, जंगल में भटक रहे कोई दिशा निर्देश देने वाला व्यक्ति मिल जाए तो उनकी समस्या को वही समझ सकते हैं। इसी प्रकार जो परमात्मा को चाहने वाली आत्माएं हैं सच्चे दिल से जो ढूंढ रही हैं, उनको ये मार्ग मिल जाता है, उनकी आंखों से आंसू नहीं सूख रहे हैं। पहले तो मार्ग ठीक मिला, फिर वो पुण्यात्मा जिस कष्ट के निवारण के लिए सब जगह घूम लिए वहां 10-10 वर्ष से नहीं ठीक हुए, यहां परमात्मा ने एक महीने के अंदर अंदर उनको वो लाभ देने शुरू कर दिए। परमात्मा खुद अपनी वाणी अपनी महिमा आप पर बताते हैं, पर्वत पर्वत में फेरा कारण अपने राम, राम जैसे संत मिले जिन सारे सब काम। परमात्मा कहते भगवान के लिए तुम ना जाने कहां कहां घूम रहे थे, पर्वत पर जिसने भी जहां बता दिए वहीं पहुंच जाते थे, लेकिन उस भगवान जैसा संत मिला, उसने फिर सारे काम किए। तो वो संत, वो तत्वदर्शी संत परमात्मा का ही प्रतिनिधि होता है। परमात्मा कहते हैं, मम संत मुझे जान, मेरा ही स्वरूपम। ओए होए, मेरे संत को मुझे ही मान, मेरा ही स्वरूप समझ, क्योंकि उस परमात्मा की शक्ति उसी दास के माध्यम से आगे प्रसारित होती है। प्रभु का यह नियम है। तो पुण्यात्माओं, आपका कोई बहुत ही पुण्य उदय हुआ है जो आपको परमात्मा की शरण, आपका कोई बहुत ही पुण्य उदय हुआ है कि ऐसे गोरकुल युग में और आपको भगवान मिलने जा रहा है। पुण्यात्मा, रास्ता मिल गया तो भगवान मिल गया। हमने अपने घर का नक्शा देखा और अपने घर की तरफ हमें और मैप से मिल गया तो हम निर्भय होकर चल पड़े कि अब हम सही चल रहे हैं तो घर पहुंचेंगे। जब तक हमें दिशा ठीक नहीं थी, हम चल भी रहे थे, साधनाएं भी कर रहे थे, रास्ते में भटक भटक के वहीं रह जाते थे, वहीं रात हो जाती थी, पड़े रहते थे, यानी हमारा जीवन मनुष्य का समाप्त हो जाता था। अब परमात्मा कहते, समझा है तो सिर दर पाओ, बहोर नहीं रहे सादाओ। ना तो बार बार मनुष्य जन्म मिला करता है, और मनुष्य जन्म मिल जाए तो तत्व ज्ञान नहीं मिला करता। और अब भी आप पीछे रह जाओगे तो आप फिर बहुत पछताओगे। बोलो सतगुरुदेव की।